ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। आज की इस खुशनुमा शाम में हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आज के मंच के सम्माननीय वक्तागण हमारी सभा में पहुंच चुके हैं। हम सम्मान सहित आपको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मैं सम्मान सहित आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के इस सत्र के चेयरपर्सन हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर सम्माननीय अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय देवी भ्राता भरत त्रिवेदी जी। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। साथ साथ मैं नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय देवी भ्राता सुनील गुलाटी साहब से। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। आदरणीय शीलू दीदी जी का स्वागत हो रहा है। आप सभी अपने मन के भावों को करतल ध्वनि के साथ व्यक्त कर सकते हैं। हमारे देवी भ्राता सुनील गुलाटी साहब IAS ऑफिसर दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं। बहने आपका भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप भी करतल ध्वनि के साथ स्वागत की इस वेला में शामिल हो सकते हैं। देवी भ्राता भरत त्रिवेदी जी आपका भी बहने हार्दिक स्वागत कर रही हैं। हम सभी बहुत सुंदर विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेडिटेशन फॉर बिजी एडमिनिस्ट्रेशन में आज के सत्र में इस सभा में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों का मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सब ने आज सवेरे से जाना, स्वयं को पहचाना। सवेरे का जो सत्र हुआ हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी ने हम सबको अपनी पहचान बताई, आत्मा के बारे में बताया कि शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, चैतन्य सत्ता आत्मा है। आज पांच तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, जो कर्म इंद्रियां हमारी इन आंखों द्वारा देख रही हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, इन सब के पीछे उस चैतन्य शक्ति आत्मा का ही कार्य है। तो हमें इस तरह से सवेरे के सत्र में स्वयं की पहचान दी गई। उसके बाद हमने जाना कि प्रशासन में वैल्यूज एवं एथिक्स का हम समावेश कैसे करें। तीसरे सत्र में हमने जाना, आदरणीय उषा दीदी जी से हम मिले और हमने सुना कि आदर्श प्रशासक के लिए आध्यात्मिकता से हम अपने तनाव को, स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। कुशल प्रशासक बनकर आध्यात्म के द्वारा, आध्यात्मिक सपोर्ट के द्वारा हम स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि समय बहुत तेज रफ्तार से भागता ही जा रहा है। किसी ने कहा भी है कि रोज सुबह से शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आज दिन की शुरुआत हम सबके पास एक लंबी लिस्ट से होती है। दिन बढ़ते बढ़ते वो लिस्ट भी बढ़ती जाती है और शायद रात तक वो लिस्ट हमारी समाप्त नहीं होती है, काम बाकी रह जाते हैं। आज हम इस भागा दौड़ की जिंदगी में लगे हुए हैं, हमारे इतनी बिजी लाइफ होते हुए भय, चिंता, उदासी, तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के इस विशेष सत्र में हम जानेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा इस भागम भाग की जिंदगी में हम सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, शांतिमय जीवन कैसे जी सकते हैं। हमारे मंच पर हमारे अनुभवी वक्तागण उपस्थित हैं, हम उनसे सुनेंगे, उनके जीवन के अनुभव हम जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जीवन को शांतिमय, सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच हमारे आदरणीय देवी भ्राता भरत त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। आप पिछले 18 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और आपको अपने लौकिक जीवन में 30 वर्षों का विशेष वर्क एक्सपीरियंस भी है। आप विशेष रूप से बलसार गुजरात से हमारे बीच पहुंचे हैं। आप डायरेक्टर अतुल इन्फोटेक एंड ट्रस्टी हैं, अतुल फाउंडेशन बलसार से हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय देवी भ्राता भरत त्रिवेदी जी से कि आप अपने जीवन के अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। भ्राता अतुल त्रिवेदी जी,
ओम शांति। जैसे बहन ने बताया, अगले 15-20 मिनट मैं अपने अनुभव से जो सीखा हूं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। शेयर करने में बहुत सारी बातें हैं, पर हम वही बातें लेंगे जो आम तौर पे कॉमन लेवल पे आपको रिलेवेंट लगे, यूजफुल हो सके। 1984 में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया केमिकल इंजीनियरिंग में, और सीबा गएगी स्विट्जरलैंड की कंपनी, उसका एक कोलैबोरेशन था अतुल लिमिटेड लालभाई ग्रुप की कंपनी वलसाड़ में, तो वहां ज्वाइन किया। शुरुआत में आईआईटी से डिग्री लेके जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए बहुत उत्साह था, और बहुत सारे प्रॉब्लम वर्क रिलेटेड जो भी थे प्लांट में, केमिकल इक्विपमेंट रिलेटेड, प्रोसेस के रिलेटेड, बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होते गए, तो एकदम फास्ट कैरियर ग्रोथ भी होता गया। उस बिकेम द यंगेस्ट प्लांट मैनेजर, देन द यंगेस्ट जनरल मैनेजर, देन ऑल्सो द यंगेस्ट बिजनेस लीडर। ये सब जब चलता रहा था उस वक्त 12 घंटा 14 घंटे काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, शरीर भी साथ दे रहा था। एक तमन्ना भी थी कि बस जो लोग कहते हैं कि भाई बंगला हो, गाड़ी हो, मोटर हो, अच्छी पोजीशन हो, वो सब हो सके उतना जल्दी से जल्दी हासिल करना है। और इसी दौड़ में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आते गए और कठिन प्रॉब्लम्स आते गए। ऐसे प्रॉब्लम्स आते गए जिनके बारे में आईआईटी में कभी कुछ सीखा नहीं। आईआईएम अहमदाबाद में भी जाके बहुत सारे कोर्सेज किए, वहां पे भी ये कुछ सीखने नहीं मिला था। कुछ प्रॉब्लम्स जो थे, एक हेल्थ फ्रंट पे माइग्रेन का दर्द हो गया, बहुत सीवियर हो गया, इतना तक कि कई बार मीटिंग छोड़ के चला जाना पड़ता था, दवाई पेन किलर स्ट्रांग लेनी पड़ती थी और 3 घंटे रेस्ट कर लो तभी कुछ कंट्रोल में आए, वरना बिल्कुल बिल्कुल ही काम ना हो सके। डॉक्टर्स को बताया, उन्होंने जांच करके कहा कि फिजिकल तौर पे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपको कुछ स्ट्रेस लगता है। तब मैंने कहा भाई ये स्ट्रेस क्या बात होती है, मुझे तो कोई ऐसा स्ट्रेस देता नहीं है, मेरे बॉस के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छी तरह हम मिलजुल के काम करते हैं, कोई मुझ पे चिल्लाता हो, मुझ पे कोई दबाव डालता हो, ऐसी तो बात ही नहीं। क्योंकि मेरी समझ ये थी कि स्ट्रेस माना कोई बाहर से करता होगा, बाहर से कोई दबाव देता होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ अंदर की बात है, तो आपको कुछ ये दवाई वगैरह तो हम आपको सिर्फ पेन किलर ही दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सॉल्व करना हो तो व्हाई डोंट यू ट्राई मेडिटेशन, ऐसे डॉक्टर ने कहा। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जहां पे डॉक्टरी का कुछ इलाज काम नहीं कर रहा, मेडिटेशन से ही क्या होगा इसमें। फिर भी प्रॉब्लम इतना सीरियस था कि सोचा कि हां जरूर ये ट्राई करके देखते हैं। उसी से मैं फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था के परिचय में आया। 92 में पहले ही बार ऐसे ही आया था, उस वक्त पे ज्ञान सरोवर नहीं था, पांडव भवन वहां पे आया था, और उषा दीदी और शीली दीदू ने क्लास कराए थे। तब बहुत सारे सवाल उठे थे मन में, प्रॉब्लम्स तो थे ही, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है, यह बात मानने को मन तैयार नहीं था। क्योंकि आईआईटी में आईआईएम में सब कुछ बातें सिर्फ लॉजिकली देखने के लिए समझाई जाती है, और यह लगता था कि जैसे ये बातें जो बहने कहती है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये मेडिटेशन करना, कुछ कनेक्शन करना, ये सब ये कुछ साइंटिफिक तो नहीं है, ये कुछ शायद उनकी मान्यता होगी, कुछ उनकी बिलीफ सिस्टम होगी, कुछ थियरी होगी, ऐसे बहुत तरह के सवाल आते रहे। और इस दौरान प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही गए, सिर्फ हेल्थ फ्रंट पे ही नहीं, फैमिली पे भी। मेरी फैमिली है, वाइफ, दो बच्चे, माता पिता, इन लॉज के साइड पे भी देर वॉज नो मेल मेंबर, सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये सब होते होते फैमिली में भी जब आप जरूरी वक्त न दे पाओ, या जो कुछ भी वक्त दो वह वक्त सिर्फ काम निपटाने की, हो सके उतना जल्दी से जल्दी काम निपटा लो इस भावना से दो, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होते, कुछ देर तक पोस्टपोन हो जाते हैं, और जब वापस आते हैं और बड़े होके आते हैं। कुछ इस हद तक पहुंचा कि कभी तो लगता था कि परिवार बिखर जाएगा। वर्क फ्रंट पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ते ही गए, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम्स होते थे उसमें इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आए कि डिसीजन मेकिंग कॉरपोरेट्स में, गवर्नमेंट में भी आमतौर पर हमेशा लॉजिकली क्या होता है उसका अभ्यास करके जो राइट है वह बात करो, लेकिन हम अपनी जिंदगी से जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी डिसीजन हम लेते हैं वह सिर्फ दिमाग का उपयोग करके नहीं लेते, दिमाग और दिल दोनों का उपयोग करते हैं। और जो भी डिसीजंस होते हैं उसके दोनों पहलू होते हैं, एक लॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है और एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है। अब आईआईएम में जितने भी कोर्सेज किए सब जगह पे लॉजिकल एस्पेक्ट्स को किस तरह से डील करना वो तो बात समझाई जाती थी, लेकिन ये इमोशनल वाला पार्ट जो है, सॉफ्ट पार्ट जो है, फीलिंग्स वाला जो पार्ट है, उसको कैसे डील करना वो तो बोले ये कोर्स के बाहर का है। इसके बारे में हम आपको ये बता सकते हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए, बिजनेस का लीडर बन गया तो फिर सीनियर लीडरशिप के कोर्सेज में भी अटेंड करने का जब मौका मिला तब बताया गया कि भाई लीडर को एम्पथी वाला होना चाहिए, डिसीजिव होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, यू नो ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो अकेले भी काम कर सके, डेमोंस्ट्रेट कर सके वैसा भी होना चाहिए, वो टीम में भी काम कर सके वैसे भी होना चाहिए, उससे फॉर्म रहते भी आना चाहिए, उससे फ्लेक्सिबल होते भी आना चाहिए, उससे स्पीच देना कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, और उसे गुड अच्छा लिसनर बनना भी आना चाहिए। बोले हाँ बात तो सब सही है लेकिन ये कैसे हो गए? क्योंकि ऐसा कोई आइडियल लीडर है जो जिसको देख के हम ये सीख सके या कोई हमें ऐसा बता सके कि इस तरह से इस विधि से हो सके, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो फिर अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जो कुछ भी ट्राई करते गए उसमें भी बहुत सारे वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे क्योंकि वो सब मतभेद के ऊपर आधारित थे। ऐसी सिचुएशन में जब करीब 3 साल हुए पैरेलली मुझे ये इन्वेस्टिगेट करते हुए कि यह संस्था में जो कुछ सिखाया जा रहा है क्या ये एक ही तो रास्ता नहीं है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, और संस्थाओं में भी गया, देखा, सुना, लोगों से अभिप्राय भी लिए, उसके बारे में बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। 3 साल का नतीजा ये निकला फाइनली कि यही रास्ता है, इसी पे चलना है और मंजिल अवश्य मिलेगी। जो सवाल है मन में वो सब सवाल के जवाब एक साथ एकदम से मिल जाए ये तो नहीं, लेकिन इस पे जवाब जरूर मिलने हैं। पिछले 18 सालों से इस राह पे चलते हुए जो फायदा हुआ है, माइग्रेन का प्रॉब्लम तो कई सालों से चला ही गया है, नो हेल्थ इश्यूज, अभी पिछले महीने ही जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन पूरा फैमिली का मेडिकल चेकअप करवाया था, पूरा डिटेल चेकअप, टच वुड, गॉड्स ग्रेस, नो मेडिकल प्रॉब्लम्स एट ऑल, नॉट इवन प्रिवेंटिव टाइप, सब कुछ नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। तो हेल्थ प्रॉब्लम का तो सब समाधान हो गया, फैमिली वाला पार्ट वह भी आज आई कैन से वी आर वेरी क्लोज एज अ फैमिली डिस्पाइट फेसिंग सम ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज। जिस टाइप के इश्यूज के बारे में कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे उस टाइप के प्रॉब्लम्स भी सब फैमिली में आई और उससे डील कर पाए, सक्सेसफुली डील कर पाए। वर्क फ्रंट पे भी जो प्रॉब्लम्स थे उसमें भी इतनी मदद मिली कि अब वहां पे भी इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। जीवन का जो लक्ष्य है, जहां मुझे पर्सनली भी मुझे काम करना है, उसी लक्ष्य की और काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनली भी अभी मौका मिला। तो इट इज काइंड ऑफ कंबाइनिंग वर्क एंड हॉबी और योर पर्सनल गोल बोथ और ऑल द थ्री टुगेदर, सो इट्स गोइंग वेरी वेल ओवर देयर ऑल्सो। नाउ ये जो ट्रांजिशन हुआ, इस ट्रांजिशन में अगर आज मैं पीछे मुड़के देखता हूं और सोचता हूं कि किस एक बात ने यह चेंज संभव किया है मेरे लिए, एब्सोल्युटली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट अ ट्रेस ऑफ डाउट आई कैन से इट इज राजयोग। इस संस्था से जुड़ने के बाद जो रोज की पढ़ाई, यहां के जो 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इस चारों विषय का डेली अभ्यास, इससे जीवन में जो परिवर्तन आया, परिवर्तन कहो खुशहाली कहो, जो कैपेबिलिटीज आई वह इसके बगैर प्राप्त करने की मैं कल्पना नहीं कर सकता। अब मैं कुछ ये बात कहना चाहूंगा कि जिस बातों की वजह से मुझे कई साल लग गए ये समझते हुए, ये रियलाइज करते हुए कि यही रास्ता है, इसी पे चलना है। तो जो भूल मैंने की शायद आप उससे बच जाए, तो उसके लिए कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। पहली भूल जो मैं कर रहा था वो तो यह कि भौतिकतावाद में हम सभी पांच इंद्रियों के द्वारा जो हमें दिखता है, जो सुनाई देता है, जो अनुभव होता है पांच इंद्रियों द्वारा, हम उसी को संपूर्ण सत्य मान के चलते हैं। इट्स ओनली पार्ट ऑफ द रियालिटी एंड नॉट द फुल रियालिटी। दूसरी एक बात इसमें यह है कि आप सब ये जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमारी जो पांच इंद्रिया है, हर इंद्रिय अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। कोई इंद्रिय या बाकी के सब इंद्रिय मिलके भी कोई एक इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आंखें जिसकी नहीं है, उस इंसान की बाकी चार इंद्रिया तो बराबर है, तो बाकी चार इंद्रियों से उसे जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में जानकारी हो सकती है, वह सुन सकता है, लेकिन उसे इंद्रधनुष कैसे दिखता है वह अनुभव नहीं हो सकता। जो इंसान डेफ है, सुनाई नहीं देता, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वह देख सकता है, पिक्चर पहचान सकता है, लेकिन उसे सात सुर क्या होते हैं उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। तो जैसे ही ये पांच इंद्रियों के बारे में एप्लीकेबल है, वैसे ही हम सब की एक कॉमन तौर पे हम जिसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस या ना, वो सेंस जो जब बाकी के पांच सेंस काम नहीं करती तब भी काम करती है, आप सबने उसकी अनुभूति की है। रात को कभी सपने देखे हैं? अभी उस वक्त आपकी आंखें बंद होती है, बाकी की इंद्रियां भी सब एक्टिव नहीं होती, फिर भी आप अनुभव तो करते हो कुछ। वो क्या अनुभव होते हो, किस तरह से अनुभव होता है, बहुत विस्तार है, उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना पॉइंट समझना जरूरी है कि जैसे पांच इंद्रियों में भी दूसरी सब इंद्रियां किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक इसी तरह ये सिक्स्थ सेंस जो है आत्मा के बारे में जो है उसकी अनुभूति बाकी की पांच इंद्रियां नहीं कर सकती। तो अगर कोई भी इंसान अगर ये समझे कि मुझे वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है उसके बारे में जानना है, समझना है, अनुभव करना है, तो वह जान सकता है, शायद समझ भी सके, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्स्थ सेंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द अदर फाइव सेंसेस। दैट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। सो शुरुआत में जब प्रयत्न करता रहा तब कई साल इसमें बीत गए ये रियलाइज करने में कि अगर मैं आध्यात्मिकता का स्टडी, यहां पे जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका अभ्यास इस तुला पे करता हूं कि यह बात मैं देख सकता हूं, यह बात सुन सकता हूं, यह बात मुझे पता चल सकती है, सिर्फ इसकी तुला पे मैं बाकी की बातें नहीं अनुभव कर सकता। सिक्स्थ सेंस की अनुभूति किस तरह से हो उसके लिए मुझे पांच सेंस की लिमिट से परे जाना है। जब ये ख्याल आया तब बाद में कई सारी दिक्कतें थी अभ्यास में सुलझती गई। दूसरी एक बात, डिसीजन मेकिंग में कंपनीज में आमतौर पे जो सिंपल बातें होती थी, सिंपल बातें कौन सी, जो दिमाग को सही लगे और जो दिल को अच्छी लगे, तो उसमें डिसीजन मेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। दिमाग को सही लगे लेकिन दिल को पसंद न हो, हमें अच्छी नहीं लगती, क्वेश्चन मार्क। कई बातें ऐसी दिल को पसंद है पर सही नहीं है, उसमें क्या करना। क्वेश्चन मार्क। चौथी कैटेगरी जो दिल को पसंद नहीं और जो सही भी नहीं, गलत है, तो उसके बारे में भी डिसीजन बहुत इजी है, नहीं करना है। लेकिन ये जो दो कैटेगरी है उसके बारे में जब जब भी डिसीजन निजी तौर पे फैमिली में करना आया या प्रोफेशनल तौर पे कंपनी में करना आया, फाइनली कंपनी में भी डिसीजन लेने वाले इंसान ही तो है। कोई भी लेवल पे आप अपने ऊपरी अधिकारी से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू द कंबाइंड इफेक्ट कि क्या सही है लेकिन अच्छा नहीं, ये हमें पसंद नहीं, ऐसी चीजें हम नहीं करते। और दूसरी बात, जो अच्छी लगती है करते हैं लेकिन अभी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अभी ये सही नहीं है, कैसे करना। तो इसके बारे में भी जब आगे इस संस्था में राजयोग का अभ्यास करने पे जो पता चला, उसमें इस बातों का डिसीजन कैसे करना है, सिर्फ डिसीजन ही नहीं इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि यह इंप्लीमेंटेशन सबसे भारी इंप्लीमेंटेशन है। किस लिए भारी है? एक छोटी सी साइंटिफिक फैक्ट है, अमेरिका में एक स्टडी हुआ, उसमें उसका जो फाइंडिंग है वह फाइंडिंग यह था, रिजल्ट उसका, कि इंसान आमतौर पे दिन के दौरान जब वह जागरूक है तब कॉन्शियस डिसीजन सिर्फ 5-6% ऑफ द टाइम लेता है, बाकी का टाइम, बाकी का समय सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पे, उसकी दैनिक कार्यवाही जो है वो चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंपनी में हो, घर पे हो या सोशल सर्कल में हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 90% से भी ज्यादा हम, हमारे जो सबकॉन्शियस है, जो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक डिफॉल्ट बिहेवियर कंट्रोल करती है शरीर का, 90% ऑफ द टाइम सबकॉन्शियसली चलता रहता है, जिसके बारे में हो जाने के बाद हम, कोई कहता है तब पता चलता है कि आपने तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, या आपने ऐसा क्यों किया। ये सब बातें, अभी ये सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से चेंज करना, ये बिल्कुल ही मैनेजमेंट स्टडीज के बाहर की बात होगी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कैसे करना है। जैसे आइसबर्ग की उपमा दी जाती है, हिमशिला जिसका 1/10 बाहर दिखाई देता है, 9/10 पानी के अंदर होता है, तो जो बाहर बाहर दिखाई देता है आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस अटेंशन करो तो उससे वह हिमशिला की उसकी गति या उसकी दिशा नहीं बदलती, अंडरकरंट जो होता है उसी के हिसाब से उसकी दिशा निर्धारित होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड, साइंटिफिक फाइंडिंग दूसरी ये भी है कि शरीर के 60-70 trillion सेल कोश जो है उसमें से 90% से भी ज्यादा कोश का कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड करता है, और लॉजिकली जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से, बुद्धि से, दिमाग से ही सोचते हैं, लेकिन उसके कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में 10% 5% ऑफ द टाइम। तो इसको चेंज करने की विधि जो है वह विधि मेडिटेशन है। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, चारों पहलू जो है, नॉलेज, ज्ञान, सही ज्ञान, वास्तविकता के बारे में ज्ञान, वह ज्ञान, योगाभ्यास, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, तीसरा उसकी प्रैक्टिस, इनकल्केशन, धारणा, और चौथा उसी का उपयोग, उसी का उपयोग जन कल्याण के लिए, विश्व के लिए, विश्व कल्याण में अपना कल्याण समाया हुआ है। पूरी प्रॉब्लम्स अगर आप दुनिया की देखें तो इट्स शिफ्ट ऑफ द फोकस, मैं ये भूल जाऊं कि दुनिया की जो होना हो वो होगा, मुझे अपने बारे में सोचना है। इट इज लाइक एट ए वेरी स्मॉल स्केल क्रिकेट की टीम है जिसके अंदर हर प्लेयर अपने बारे में सोचता है, टीम के बारे में नहीं, तो उस टीम का क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह विश्व की जो फैमिली है उसमें हर इंसान अपने बारे में सोचे, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, तो उसका क्या होगा उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये सेवा का जो पहलू है इसके आधारित है। ये चारे बात ऑन अ डेली बेसिस हमें करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता रोज है, एक्सरसाइज भी रोज करने के लिए हमें डॉक्टर कहते हैं और आराम भी हमें रोज ही चाहिए, ठीक इसी तरह आत्मा के लिए भी भोजन अर्थात शुद्ध पॉजिटिव संकल्प थॉट्स वो भी डेली चाहिए। आप ये समझे कि अगर जब फुर्सत मिली एक आध बार साल में कई कोई ऐसी जगह पे जाके आए कुछ सुन लिया तो उसकी इफेक्ट रहेगी टेम्पररी, फिर से वापस जाने के बाद में बहुत सारे लोगों का यही अनुभव रहा कि हाँ वो यहां वहां पे तो सब ठीक था आबू में, लेकिन यहां पे आने के बाद में तो पता है ना सब दुनिया में तो कैसे चलता है, तो यहां पे तो वो सब नहीं हो पाता, फिर से कभी जाएंगे तब देखेंगे। यहां का लक्ष्य ये है कि यहां पे आके आप जो महसूस करते हो सिर्फ उसे टिकाए नहीं उसमें भी बढ़ाए, कहां यहां रह के नहीं वापस उसी संसार में जाके वहीं पे रह के सब जिम्मेवारियां निभाते हुए, वो कैसे करना है वह सीखना है। वह बातें सीखने मिली, बहुत बहुत फायदा हुआ है उसका। बहुत समय हो गया है तो यहीं पे आपसे सबसे एक ये निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पे आके सही रास्ता मिला सिर्फ इतना ही नहीं, उससे भी बड़ा जो फायदा हुआ वह फायदा यह कि इस रास्ते पे साथ चलने वाला 24/7 साथ रहने वाला साथी मिला, परमात्मा के साथ का, परमात्मा के गाइडेंस का, आप अपने रोज बरोज के जीवन में उसे सॉल्व करने में आप महसूस कर सकते हो। यह अनुभव से कह रहा हूं, मनगढ़ंत बात नहीं है, साइंस का स्टूडेंट हूं, बहुत सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बाद में हो सकता है, फिलहाल इतना ही काफी है कि ये दोनों बातें सही रास्ता और साथ चलने वाला, जब ये दोनों बात साथ हो तो फिर भविष्य के बारे में हम एकदम सुनिश्चित हो सकते हैं। उतना ही नहीं जो यात्रा है वह भी एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव हो जाता है। इसी यात्रा में जुड़ने के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए आपसे विदाई चाहूंगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई जी, आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़कर जो अनुभूतियां की, जो प्राप्तियां ली, वो हम सबके साथ शेयर किया। आपने विशेष बताया कि आपके जीवन में पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी और राजयोग मेडिटेशन करके आपने उन प्रॉब्लम को कैसे सहज रीति से दूर किया और अपनी जीवन यात्रा को उस परमपिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर सहज कर लिया है। वास्तव में अभी तक हम सभी उस प्यारे प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को सिर्फ अपना मुसीबत का, दुख का सहारा समझते हैं। हम कहते हैं कि भगवान हमारा सहारा है, लेकिन यहाँ पर जब हम आए और हमने जाना, सीखा कि परमात्मा सिर्फ सहारा नहीं है बल्कि हम सबकी जीवन यात्रा का या हमारे शरीर में जो चैतन्य शक्ति आत्मा है उसका वो सच्चा सच्चा साथी है। क्या कहेंगे आप सभी, भगवान सहारे के साथ साथ हम सबका साथी है। सवेरे के सत्र में हम सब सुन रहे थे कि हमें दीदी बता रहे थे कि हम सब एक कहावत कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, लेकिन उसके आगे की लाइन दीदी ने कहा और भी सुंदर है कि जो सुख में करेगा तो उसको दुख काहे को होए। तो आज इतने सुंदर विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जीवन को इजी कैसे बना सकते हैं, सरल कैसे बना सकते हैं, जीवन की यात्रा आज हम सब जो कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं देखते हैं तो हमें मुश्किल अनुभव होती है। आज जब हम किसी से पूछते हैं जीवन में क्या हालचाल है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कहते हैं बस चल रही है, काट रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, राजयोग करने से हमारा जीवन बहुत सहज रीति से सुखमय और शांतिमय हो सकता है। जैसे भरत भाई जी ने भी बताया कि जीवन की यात्रा सुगम और सरल हो सकती है और हम सहज भाव से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर हम जीवन में चल रहे हैं, हम वो सहज रूप से पार कर सकते हैं। अभी मैं और अनुभव सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच विशेष हमारे मेहमान भ्राता सुनील गुलाटी साहब, आईएएस ऑफिसर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली से हमारे बीच हमारे विशेष आग्रह पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने जीवन के अनुभव आज के इस विषय पर शेयर करें। आदरणीय देवी भ्राता सुनील गुलाटी साहब।
परम आदरणीय बहन रीना जी, शीला जी, भरतवेदी जी, उपस्थित सज्जनों, मुझे, मैं कहता हूं मेरा सौभाग्य है कि आज ये मौका दिया कि मैं यहां आप सबके बीच बैठ करके कुछ बात कर सकूं, कुछ अनुभव साझा कर सकूं। मैं पिछले 1.5 साल से डीडीए में चीफ विजिलेंस ऑफिसर हूं और बड़ी नजदीक से मुझे काफी कुछ देखने का मौका मिला और मैं वृद्धावस्था में केयर कैसे हो, एल्डरली केयर कैसे हो, इस पर पीएचडी भी कर रहा हूं, तो कई लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है जो जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचे हैं, तो काफी कुछ उनका अनुभव सुनने को मिलता रहा, तो उसमें से भी कुछ लेकर के मैं आपसे साझा करूंगा। तो एक चीज तो जो समझ में आई मुझे, जब मैं जॉब में फील्ड से जब मैं चंडीगढ़ ट्रांसफर होकर के गया तो सेक्रेटरिएट में मेरा 7वीं मंजिल पे कमरा था, तो मैं देखता था कि दफ्तर में रोज कोई 10 से 12 बजे के बीच में, 11 बजे के बीच में 5-1 हजार लाशें आती थी रोज हमारे दफ्तर में, और शाम को 4 बजे से 5-5:30 के बीच में जैसे 5,000 लाशें बाहर चली जाती थी। लोग आते थे एकदम निरुत्साहित से, एकदम निराश से लोग दफ्तर में प्रवेश करते थे और शाम को वही लोग वापस अपने अपने घर चले जाते थे। एक ऐसा लगता था कि एक उत्साह नहीं है। और यही चीज मैं जब आईएम बैंगलोर में एमबीए कर रहा था तो वहां उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी संगठन क्यों होना चाहिए। अब बताएं कोई भी संगठन किस लिए चाहिए? जैसे कुछ भी काम हम अकेले भी कर सकते हैं। मैं अगर स्कूल चलाना चाहूं तो मैं अकेले ही सब बच्चों को सब विषय पढ़ा सकता हूं, वो असंभव नहीं है। पर कोई भी संगठन हम बनाते इसलिए हैं ताकि हर किसी में जीवन में कुछ करने की उमंग है, कुछ उत्साह है, उस सारे उत्साह को इकट्ठे किया जा सके, इसीलिए संगठन बनाया जाता है। तो मुझे जो समझ में आया, पंजाब में हमने टेररिज्म देखी, टेररिज्म में वो व्यक्ति को गोली मार देते थे, तो गोली मार देते थे तो व्यक्ति भी मर जाता था, उसका उत्साह भी मर जाता था। पर मैंने देखा कि लोग जो हैं अक्सर अपने दफ्तर में ऐसे बिहेव करते हैं कि जो अपने नीचे काम करते हैं उनका पूरा उत्साह खत्म कर देते हैं। तो जब हम उत्साह व्यक्ति का खत्म कर देते हैं, उसका जीने की उमंग को खत्म कर देते हैं, तो क्या बच जाता है? वो एक जिंदा लाश बच जाती है। वो रोज आता है आपके यहां, काम करता है बिना उत्साह के और वापस चले जाता है। और धीरे धीरे हमारे सिस्टम में ऐसा ही हो रहा है। हमारे देश में कमी किसी चीज के नहीं है, प्रशासन है, सब कुछ है, पर वो उत्साह, वो उमंग कहीं गायब हो गई है, जो कि कैसे हम समाज को दे सकें, कैसे समाज के लिए कुछ किया जा सके, वो उमंग, वो उत्साह जो है बीच में से कहीं से गायब हो गई है। तो ये पहली ही चीज जो मेरे समझ में आती है कि ये जो हमारा मेडिटेशन है ये जीवन में उमंग को, उत्साह को वापस ला सकती है। सबसे बड़ी इसकी जो, इसका जो योगदान है वो ये है। और हमारे जैसे मुल्क में जहां 120 करोड़ की आबादी है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो मैं समझता हूं एक इस तरह की संस्था नहीं, कई सारी संस्थाएं ऐसी जरूरत है जो सिर्फ इतना ही करें कि लोगों के जीवन में उत्साह को पैदा करके रखें, उमंग को पैदा करके रखें, ताकि वो सिर्फ अपने जीवन को सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया ही नहीं बना दें, समाज के लिए कुछ करने का जरिया बना के रख सके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो मेडिटेशन है ये प्ले कर सकती है। क्योंकि हम सब चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें। खुश रहने के लिए मुझे ये समझना होगा कि मैं कौन हूं। जैसे अभी भरत त्रिवेदी बता रहे थे कि मैं क्या ये सिर्फ शरीर हूं या इससे कुछ और हूं, क्या हूं मैं। खैर आप लोग जो यहां आए हैं बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, ज्यादातर कुछ ना कुछ इस विषय पे सोच कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता। पर फिर भी क्या मैं सिर्फ शरीर हूं? नहीं, शरीर नहीं हूं, मन भी हूं, बुद्धि भी हूं। बुद्धि के अलावा और आगे चले जाऊं, तो आई एम ऑल्सो द इंटेलेक्ट एंड आई एम ऑल्सो द सोल, मैं आत्मा भी हूं। तो जब मैं आत्मा भी हूं तो सवाल ये उठता है, तो क्या मैं 25% शरीर, 25% मन, 25% बुद्धि या 25% आत्मा हूं? क्या है, क्या शेयर क्या है या कुछ और है? तो इस पे थोड़ा सा और गौर करते हैं तो समझ में आता है कि एक छोटा सा ही अंश है जो शरीर है, कहा जा सकता है एक नगण्य अंश है 1%, बाकी 3% मन है, 6% बुद्धि है और 90% जो है वो मेरा आध्यात्मिक कंटेंट है, स्पिरिचुअल कंटेंट है। अब ये एक छोटी सी बात है जो यहां भी मैं समझता हूं जो पुराने राजयोगी हैं उन सबको पता होगा, और बाकी जो हम लोग नए आए हैं बहुत कम लोग इस बारे में सोच पाते हैं। हमारे सारे जीवन की सोच, जैसे भरत जी कह रहे थे, सिर्फ शरीर तक सीमित होकर रह जाती है। हम पूरी अपनी ताकत सब कुछ शरीर के पीछे लगा देते हैं, और जब अगर हम पूरी अपनी 100% रिसोर्सेज को, जो शरीर सिर्फ 1% है पूरे हमारे होने का, उसी के ऊपर लगा दें तो क्या हम सफल होंगे? बताइए, सफल हो सकते हैं? मैं अपना सारा साधन अपने 1% पे लगा दूं और बाकी को छोड़ दूं तो सफल नहीं होऊंगा। और वही हो रहा है, लोग अपने पूरे साधन को एक ही जगह लगा रहे हैं अपने शरीर को बढ़िया करने में। तो इट्स मोर ऑफ बॉडी वर्शिप, वी आर फॉरगेटिंग कि हम आत्मा हैं, उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसा है कि मैं अपने जीवन में कई सारी चीजें इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, सारे शून्य इकट्ठे कर लूं, तो सारे शून्य जोड़ करके क्या बनता है? क्या बनता है? शून्य ही बनता है। जिस दिन मैं ये सीख जाऊं कि मैं उन शून्यों के आगे एक बन के खड़ा हो गया, तो वही 7 शून्य जुड़ क्या बन जाएंगे, एक एक आगे लग जाने से 1 करोड़ बन जाएगा। तो यही हमारे जीवन में हो रहा है, हम शून्य इकट्ठे करते जा रहे हैं, हम वो एक बनना भूल रहे हैं। अगर हम एक बन जाएं तो उन शून्यों की भी कोई कीमत होगी, फिर वो शून्य भी किसी काम में आएंगे। तो जितने साधन हम इकट्ठे कर रहे हैं अगर उसका यूज करना नहीं आए तो फायदा क्या है? अभी आपने देखा दिल्ली में 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, वो 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया था उन्होंने, पर भाइयों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे गोली मार दी। एक और केस में एक और है, उन्होंने कितने ही 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली थी और अपने ही पुत्र ने पिता को मरवा दिया। तो इतने सारे शून्य इकट्ठा करने का क्या लाभ हुआ? सोना तो वही एक कमरे में सोना है, थोड़ा सा खाना खा रहा है, सीमित ही जरूरत है, पर इकट्ठे कर ही जा रहे हैं, होड़ में लगे हुए हैं, वो एक नहीं बन पा रहे। तो ये जो मेडिटेशन की बात आती है, ध्यान की बात आती है, मुझे समझ में आता है कि इतना ही लक्ष्य है कि मैं अपने एक को पहचानूं, अपने मूल को पहचानूं। अगर एक बन गया तो ये सारी चीजें अपने आप सार्थक हो जाएंगी। वैसे तो ये निरर्थक हैं, पर इनका उपयोग अच्छी जगह हो जाएगा तो सार्थक हो जाएंगी। तो ये छोटी सी चीज जो मुझे इतने सालों में समझ आई, ये मैं समझता हूं यही हमारा जो खोज है वो यही है कि मैं अपने इस एक को ढूंढूं, अपने सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करूं। और यही मेडिटेशन है कि कैसे मैं अपने सेल्फ तक पहुंचूं, अपनी आत्मा तक पहुंच सकूं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी होती है पर वो मांगता खिलौना है, पर मां क्या करती है, उसको खिलौना पकड़ा देती है और मुंह में खाना डाल देती है, क्योंकि मां को पता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। तो हमें पता नहीं कि हमें क्या चाहिए, हम सोचते हैं कि हम ये यंत्र ले आए तो खुश हो जाएंगे, उससे खुशी नहीं मिलती, फिर हम दूसरी चीज ले आते हैं, हम फ्लैट टीवी ले आते हैं तो सोनी वाला एचडी टीवी बना देता है। उसका काम यही है कि उसको सारा जीवन आपको असंतुष्ट रखना है, अगर आप छोटी गाड़ी ले आओगे वो और बड़ी गाड़ी बना देगा, फिर आपको कहेगा तुम मूर्ख हो यार छोटी गाड़ी में घूम रहे हो, फिर आप और बड़ी ले आएगा तो एसयूवी ले आएगा, फिर आपको लगेगा कि मैं मूर्ख हूं मैं नॉर्मल लंबी कार में घूम रहा हूं एसयूवी होनी चाहिए। वो आपको संतुष्ट होने ही नहीं देगा। मार्केटिंग का पर्पस ही यही है कि आपको असंतुष्ट करके रखे ताकि आप नई नई चीजें उससे लेते रहो। तो यही चीज है कि हम इतनी चीजें इकट्ठी करते रहेंगे पर हमारा फोकस नहीं है। जैसे ही हमारा फोकस, जैसे मां होती है घर का सारा काम करती है पर ध्यान बच्चे में रहता है, वैसा ही अगर हम अपने जीवन में हो जाएं कि ध्यान ईश्वर की तरफ रहे तो घर का या संसार का काम करना कोई मुश्किल नहीं है, सारा काम हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति भी हो जाएगी। पर हो क्या रहा है कि हम जो मूल उद्देश्य जिसके लिए संसार में आए थे वो छोड़ करके और हम इकट्ठा करें। मुझे अक्सर दिखाई देता है अपने स्टाफ में ही पता चलता है कि इसके तीन मकान है, उसके चार मकान है, उसकी तीन गाड़ियां चार गाड़ियां इकट्ठे करते जा रहे, पता नहीं किस लिए करते जा रहे और फिर जाना तो है ही एक दिन लपेट लपाट के चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना। नहीं देखिए डेवलपमेंट की परिभाषा क्या रह गई है, आप पंजाब जाके देखिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सारे देसी शराब से अंग्रेजी शराब में आ गए। गली गली में आप जाके देखिए वो कोडीन सिरप है, कफ सिरप है, पूरी बॉटल्स का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि सब नशा कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। ये क्या विकास है क्या? अगर मैं 1,00,000 रुपए की अगर शराब की बोतल पी लूं तो क्या अगले दिन सुबह मेरा जो यूरिन होगा वो 1,00,000 रुपए का यूरिन निकलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बट यही हो रहा है, लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उससे सोचते हैं कि इसमें सुख मिल जाएगा। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने सेल्फ तक पहुंचने की किसी ने कोशिश नहीं की, और शायद हम लोगों जो पूरा समाज है जो उसने भी ये अपने मूल्यों को छोड़ दिया, हम लोगों ने इस दिशा में जितना प्रयास करना चाहिए था किया नहीं, और अनफॉर्चुनेटली ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन के चक्कर में देश ने जो हमारे देश का जो यूएसपी था, जो मूल हमारे देश की चीज थी, वो अध्यात्म था, उसको छोड़ दिया हमने और हम बाकी चीजों के पीछे घूम रहे हैं सिर्फ ये सेकुलरिज्म के बैनर के पीछे। मैं समझता हूं ये कहीं हम बहुत भारी भूल कर रहे हैं। जो हमारा मूल है, जैसे चाइना है, उसने जो उसका मूल था चाइनीज मेडिसिन और बाकी चीजें, उसको उन्होंने सबसे पहले प्रिजर्व किया, अपने कल्चर को सबसे पहले प्रिजर्व किया, फिर बाकी चीजों की बात की, फिर अपने सिस्टम को खोला। हमने अपने जो मूल है उसको छोड़ दिया, वापस हमें अपने मूल को पकड़ना पड़ेगा। हमारा मूल अध्यात्म ही है और उस अध्यात्म को अगर हम पकड़ लेंगे तो बाकी चीजें देश की अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो ये बेसिक जो है, हमें वेल्थ पावर स्टेटस सब कुछ चाहिए, पर अगर हम अपने आत्मा तक नहीं पहुंच पाए तो कुछ भी उसका लाभ नहीं है। सोचें अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि मैं शरीर नहीं हूं तो हम डेफिनेटली जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। अब सफलता, हर कोई सफल होना चाहता है। मैं कहता हूं सफलता की परिभाषा क्या है, एक छोटी सी परिभाषा। मैं इंजीनियर हूं IIT से, एक छोटी सी परिभाषा मैंने एक ये सोची है कि अगर मेरे होने भर से मेरे आसपास के जो प्राणी हैं उनको आनंद आ जाए तो मैं अपने जीवन में सफल हूं। सिर्फ मेरे होने भर से सबको आनंद आ जाए तो मैं सफल हूं। तो अगर हम इस तरह सोचें कि कैसे हम ऐसे बन जाएं कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनको आनंद दे सकें, ये सोचना है। इसमें छोटी सी बात यह समझ में आती है कि मैं तब खुश हूं जब मेरा ऊर्जा का स्तर ऊंचा है। ऊर्जा का स्तर मेरा कब ऊंचा रहेगा? अगर ऊर्जा का स्तर डाउन है तो मैं दुखी हूं। ऊर्जा का स्तर के लिए तीन जो हमारे गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इसको समझना पड़ेगा। अगर मुझे खुश रहना है तो सत्व बढ़ा के रहना है। आप यहां आए हैं, आप सबको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां हर चीज सात्विक है, भाव भी सात्विक है, भोजन भी सात्विक है, विचार भी सात्विक है, परिवेश सात्विक है। यही सात्विकता ही है जो हमें आनंद में रख रही है। ऐसा नहीं कि रजस बुरा है, पर एक्टिव, अगर मुझे एक्टिविटी करनी है तो रजस चाहिए और मुझे सोना है तो तमस चाहिए। अब ये मेरे जीवन में कैसे ये चीजें ढलती हैं उस पर मैं थोड़ा सा कहूंगा। जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं, वापस मैं उस पर आता हूं, तो तमस तामसिक एम्प्लॉयज हमारे लार्ज नंबर में हैं। उनका मतलब क्या हुआ? वो लेजी हैं, ढीले ढाले हैं, उनको हमेशा काम कराने के लिए डंडा दिखाना पड़ता है, ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा। तो क्या है, इट्स लाइक हैविंग ए स्पोर्ट्स कार जिसके सारे स्विचेस आपने ऑफ किए हुए हैं, किसी यूज की नहीं है, वो सब कुछ है, बहुत अच्छी चीज है, पर उसका कोई यूज नहीं है। राजसिक क्या हुआ, राजसिक व्यक्ति वो होता है जो अपने सेल्फिश डिजायर से ही काम करता है, हर चीज अपने मतलब से काम करता है, तो वो ईगो ड्रिवन है, वो एक्शन तो करेगा पर वो आपसे पूछेगा कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, ये राजसिक व्यक्ति हुआ। और ये ऐसा हुआ जैसे हमारे पास कार है, बहुत बढ़िया कार, हम उसको ऑन कर दें, एक्सेलरेट भी पूरा करें और ब्रेक के ऊपर भी पेडल करके रखा हुआ है, तो कार कहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं जाएगी, हम एक्सेलरेट पूरा कर रहे हैं पर ब्रेक पे पेडल रखा है, मतलब मुझे सब कुछ अपने लिए चाहिए, मैं और किसी से बांटना नहीं चाहता, उसको रोक के रखा हुआ है। और सात्विक वो है जो सेल्फलेस है, जो अपने से ऊपर उठ के काम कर सकता है, प्योरिटी से काम करेगा, जिसमें तनाव नहीं है, जो औरों के बारे में सोच सकता है। तो तामसिक को हमेशा डेडलाइंस चाहिए, डंडा चाहिए, तब वो काम करेगा। और अनफॉर्चुनेटली अधिकांश हमारे एम्प्लॉयज, उनको चेंज किया जा सकता है पर अभी इसी कैटेगरी में बैठे हैं। राजसिक वो हैं जो ये कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब उनको कुछ ना कुछ एक्सचेंज में चाहिए। और डीडीए में तो अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं तकरीबन 70-80% ऐसे ही हैं जो कुछ ना कुछ मिले तभी काम करते हैं, नहीं तो काम ही करने को तैयार नहीं। तो ये राजसिक एक्टिविटी हो जाती है। और सात्विक ऐसे हैं जो प्रोएक्टिव हैं, जो खुद ही उठ करके काम करने को तैयार रहेंगे, कोई दिख जाए कि जरूरत में है तो उसकी सेवा करने को तैयार रहेंगे। ये हमारी चॉइस रहेगी कि मैं सात्विक व्यक्ति बनना चाहता हूं कि राजसिक बनना चाहता हूं कि तामसिक बनना चाहता हूं, ये चॉइस हम सबको करनी है। और ये बात हर व्यक्ति के जहन में उतर जानी चाहिए तभी हम इसका फायदा उठा पाएंगे। तो यही हम लोगों को करना है कि ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। अब इसमें हमें यह सोचना होगा कि ऊर्जा हमें मिलती कहां से है। तो ऊर्जा के चार सोर्स हैं। कौन से चार सोर्स हैं? सबसे पहला सोर्स फूड, दूसरा थॉट, तीसरा रेस्ट और चौथा सांस। ये चार सोर्स हैं ऊर्जा के। और इसमें ये संतों को ये ज्ञान पहले से ही था, जैसे हमारे जैन मुनि हैं, शाम को कुछ खाते ही नहीं हैं, वो ज्ञान से अपना काम चला लेते हैं। तो ये चार सोर्स को व्यक्ति बदल सकता है, भोजन, विचार, सांस और विश्राम। इन चार सोर्स को, ऊर्जा के सोर्स को मैं आपस में एक्सचेंज कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ भोजन से ही मुझे शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, इनको मैं आपस में बदल सकता हूं। इवन ये ज्ञान मनुष्य के अलावा पशुओं को भी है, इवन क्रोकोडाइल है या छिपकली भी है, वो जाकर के, या कछुआ है, वो पूरी सर्दियों में जाकर के आराम से बैठ जाता है, सांस पे काम करता है, विश्राम पे काम करता है और अपनी ऊर्जा निकाल लेता है। तो ये चीज हम भी सीख सकते हैं। तो हमें अपने भोजन के बारे में सजग होना होगा, सात्विक आहार होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी चीज सिर्फ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम कहते हैं हम पंच महाभूत से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें जो पृथ्वी तत्व है ये हमको दालों से मिलता है, अनाज से मिलता है। जो जल तत्व है ये हमको बेल पर लगने वाली सब्जियों से मिलता है। अग्नि तत्व हमको वृक्ष पर पकने वाले फलों से मिलता है। हमारा वायु तत्व हमको हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। पर ये आकाश तत्व कहां से मिलता है, ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। ये आकाश तत्व कहां से मिलता है? तो इसमें छोटी सी चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा जो मुझे समझ में आती है कि अगर आप देखें तो हर हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसके अंदर भी सबसे छोटी इकाई हमारी एटम है। एटम के अंदर आप देखें तो एटम के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठोस है, आसपास इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है। अगर मैं आपके सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठा कर दूं तो जितना बड़ा ये लैपटॉप है उसके अंदर एक पूरा व्यक्ति समा जाएगा, बाकी सारा व्यक्ति अंदर से खाली है, लेकिन हॉलो एंड एम्प्टी है। और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो कि स्पंदन है, जो कि वाइब्रेशन है। और हमारे मंत्र क्या है, मंत्र भी स्पंदन है, वाइब्रेशन है। तो ये जो बात है ध्यान करने की, जाप करने की, इसका बड़ा साइंटिफिक बेसिस है। वहां से हमारा आकाश तत्व का पूरण होता है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, कोई भी कहता है किसी से कहो कि भाई आप इसमें ध्यान करो साधना करो, वो कहता है ये मैं बुढ़ापे में करूंगा। अरे बुढ़ापे में क्यों करोगे, तुम्हें आकाश तत्व आज भी चाहिए जैसे बाकी चार तत्व चाहिए, पृथ्वी अग्नि वायु जल चाहिए, वैसे आकाश तत्व का पोषण अगर हम पूरा जीवन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में आकाश तत्व आएगा कहां से। ये छोटी सी बात अगर हम लोगों के जहन में उतार दें तो लोग इसको नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे कि ये ऐसी चीज है ध्यान करना या साधना करना कि ये बूढ़ों के लिए है या जो बेरोजगार है उनके लिए है या जिनको कोई काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति ये करे तो ये आकाश तत्व उसको मिल सकता है, और आकाश तत्व मिलने से जो हमारे अंदर फिर ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे रसगुल्ला होता है, उसको कहीं से भी दबाइए तो उसके अंदर से रस निकल के आएगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम कहीं भी हों हर स्थिति में हर स्थान में हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं बुजुर्गों के साथ जब काम करता हूं तो मुझे यही लगता है कि बुजुर्गों के होने का एक ही कारण काफी है कि अगर बुजुर्ग बैठ करके ध्यान करें साधना करें और लोगों को आशीर्वाद ही देते रहें, इतनी तृप्त आत्माएं होते हैं वो कि उनके आशीर्वाद से ही ये हमारा देश जो है ये फल फूल जाएगा, उसी से ही सब कुछ अपने आप पूर्ण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि विद्वानों के समाज में जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी जरूरत है। ये आकाश तत्व की जो पूर्णता है उनसे प्राप्त हो सकती है और हर कोई हम इसमें काम कर सकते हैं। और एक और छोटी सी चीज जो हमें समझनी होगी कि मैं नेचुरोपैथी की है तो थोड़ा सा उस दृष्टि से आपसे साझा कर रहा हूं कि इन पांच तत्वों में चार तत्व एल्कलाइन होते हैं, सिर्फ पृथ्वी तत्व जो है वो एसिडिक होता है। और हमारे शरीर में जो ब्लड है और लिम्फ है, ये दो ही द्रव्य हैं जो कि सारे भोजन को हमारे शरीर में लेकर के इसको ऊर्जा को लेकर के ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये दोनों एल्कलाइन है। तो जब मेरा शरीर एल्कलाइन है तो मैं भोजन भी ऐसा करूं जो 80% एल्कलाइन हो और 20% एसिडिक हो। एल्कलाइन का मतलब जैसे मैंने बताया फल सब्जियां अंकुरित और नट्स, ये 80% हो, 20% जो है वो दालें अनाज ये सीरियल्स ये सब हो, तो एल्कलाइन भोजन रहेगा तो अपने आप ही मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और टचवुड मैंने देखा है पिछले करीब 17 साल हो गए कोई एलोपैथिक दवाई खानी नहीं पड़ी, सिर्फ छोटी छोटी इन चीजों का ध्यान रख करके ही और थोड़ा बहुत ये जो साधना कर लेते हैं उसी से ही शरीर चल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो इतना ज्यादा हमारा मेडिकल का एक्सपेंस आए ही नहीं। अगर हम 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक भोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएं तो वैसे ही ध्यान और साधना अपने आप अच्छी होगी, जीवन भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये एक छोटी सी चीज जो समझ में आती है, बैलेंस्ड फूड रहे, न ज्यादा जलन हो न उत्तेजना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, मेल बेमेल का ध्यान देके रखें, भोजन ठीक रहेगा तो ध्यान आसानी से लगेगा। ये जो चार व्हाइट पॉइजन्स हैं उनको हम अवॉइड कर जाएं, जो कहते हैं ना ये सफेद जो चार जहर बताए गए हैं, चीनी है और सफेद नमक है, जो डालडा घी है और मैदा है, इन चारों को अवॉइड करने को जैसे बताते हैं, वो आइडिया यही है कि अल्टीमेटली हम साधना अच्छी से कर सकें उसके लिए है। तो बैलेंस डाइट हो, योग आसन प्राणायाम हो, हमारा वर्क जो है वो रूटीन हमारी मॉडरेट हो, हमारे कपड़े साफ सुथरे हो, परिवेश साफ सुथरा हो, डाइजेशन अच्छी हो, एलिमिनेशन अच्छी हो, नेचर के साथ रहें। और गांधी जी ने जो ध्यान में एक चीज जो पंच महाभूत में एक छठा आइटम जोड़ा, गांधी जी ने क्या जोड़ा था मालूम है, गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था नेचुरोपैथी को, राम नाम, गांधी जी ने राम नाम जोड़ा था। ये एक ऐसी चीज है जो सबके पास हो जाए, या जिस तरह से भी हम उसको नाम को लें, नाम तो उसी ईश्वर का है, पर उसी से ही मैं समझता हूं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी और भगवत प्राप्ति होगी होगी। क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन को सिर्फ बॉडी की हेल्थ की डेफिनेशन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, जैसे भरत जी कह रहे थे कि डॉक्टरों ने कहा कि शरीर तो ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और है, बट एलोपैथी को इसी में ही सूट करता है। और अब धीरे धीरे स्थिति ऐसे आने वाली है कि वो आपको तब तक मरने नहीं देंगे जब तक आपका बटुआ खाली नहीं हो जाएगा, वो पूरा जोर लगाएंगे, इंश्योरेंस ऐसी करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, तो ये हम ही को अपने एक्सपीरियंस को नहीं, ये रियलिटी है, मैं देख रहा हूं इस चीज को रोज होते हुए, तो हमको ही अपने जीवन के अभ्यास को ऐसा करना पड़ेगा कि हम कुछ और चीज में हम, ताकि बुढ़ापे में जाकर के पता नहीं चलता है कि मेमोरी कैसी हो जाए, क्या हो जाए। अगर अभ्यास रहेगा हमारा कुछ ध्यान करने का, साधना करने का, जाप करने का, तो वो हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, हमें एक संभाल के रखेगा और दिशा और दशा दोनों ही हमारी ठीक रहेंगी। जैसे कि एक बैटरी होती है, अगर हम कार की बैटरी को 12 वोल्ट पे चार्ज करें तो हफ्ते भर में चार्ज होगी, अगर 220 वोल्ट पे करते हैं तो एक रात में चार्ज हो जाती है कि नहीं, ठीक है ना। अगर उसी बैटरी को मैं 11 किलो वोल्ट पे लगा दूं तो 10 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, और उसको मैं 132 पे लगा दूं तो एकदम चार्ज हो जाएगी। तो ये जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसकी शक्ति से अगर हम अपने आप को चार्ज करना सीख जाएं, तो छोटे से पल भर के लिए ही बेशक कनेक्शन हो जाए, जब हम ध्यान में बैठते हैं छोटे से एकदम मिली सेकेंड के लिए भी कनेक्शन हो जाए, तो उससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और हमारी बैटरी चार्ज रहेगी तो हम औरों के साथ अपने चार्ज को साझा कर सकेंगे, बांट सकेंगे। तो ये बड़ा जरूरी एक हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम रोज अपना अभ्यास नियमित रूप से करते रहें, ताकि उसको हम औरों से बांट सकें, है कि नहीं। यस यस, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए हुआ क्या है, बेसिकली किसी भी समय समाज में देखेंगे 10% व्यक्ति बहुत सज्जन है, 10% दुष्ट है, 80% बीच में बैठे हैं, देख रहे हैं कौन सा किसका पलड़ा भारी है। अब हमें क्या करना है, हमें 10% सज्जनों को आइडेंटिफाई करना है। हो ये गया है कि दुष्ट हावी हो गया, मीडिया उसको 24 घंटे कवरेज देता है तो लोगों को लगता है उसका पलड़ा भारी हो रहा है। सज्जन जो है वो चुप बैठ गए हैं कि भाई मैं अपना मोक्ष तो कर लूं, बाकियों को छोड़ो, मैं अपना काम कर लूं उतना काफी है, पर उससे काम नहीं चलेगा। सज्जन निष्क्रिय जो हो गए हैं, ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। सज्जनों को हमें इकट्ठा करना है, उनको सक्रिय करना है, एक एक व्यक्ति को 10-10 लोगों की जिम्मेवारी लेनी है। अगर हम सज्जनों को सक्रिय कर दें, 10% लोग अगर सक्रिय हो जाएं जो सज्जन हैं, तो बाकी 80% को लगेगा कि हाँ हमारा देश ठीक दिशा में चल सकता है, ठीक दिशा में जाएगा और देश हमारा खड़ा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह का यहां मौसम है, हर तरह के फल सब्जी सब कुछ मिलता है, लोग भी पर्याप्त हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ इस संकल्प की आवश्यकता है कि हम कर सकते हैं, हमारे देश में अच्छाई की कमी नहीं है। ये सब हमको मिलकर के यही करना है, सज्जनों को ढूंढ ढूंढ के निकालो, उनको किसी इसी तरह की अच्छी जगह में लाओ, और उनको रोज सक्रिय रहना है, निष्क्रिय नहीं हो जाना, घर जाके सो नहीं जाना है, रोज साधना करनी है, करते रहना है, एंड वी विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स वेरी वेरी सून इन आवर लाइफ टाइम्स ऑन इटसेल्फ, नेक्स्ट 10 ईयर्स इटसेल्फ वी विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स। आपको 100 साल वेट करने की या अगले जन्म के वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सज्जनों को इकट्ठा करके सक्रिय कर दो। कर सकते हैं, यस यस, दैट इज व्हाट मेडिटेशन विल डू फॉर अस। तो जो जब मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं, तो चार टूल्स हैं अपने तक पहुंचने के लिए, विवेक, वैराग्य, एंजॉइंग द 6 वेल्स और मुमुक्षुत्व जो है, द डिजायर फॉर द हाइएस्ट। विवेक जो है ये समझ में आ जाए कि डिस्क्रिमिनेशन कि ठीक क्या है गलत क्या है, ये समझ में आ जाना, ये पहला जो 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 4 टूल्स आई एम टॉकिंग ऑफ अपने तक पहुंचने के लिए, सेल्फ तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी ये विवेक हो जाना जरूरी है कि मैं क्या ठीक है क्या गलत है, इतना समझ में आ जाना। इसमें एक चीज जो जरूरी समझ में आती है वो ये है कि अपरिवर्तनशीलता, जो हमारी आत्मा है अपरिवर्तनशील है। वो छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये चारों तस्वीरें एक ही व्यक्ति की हैं, कौन कहता है कि ये एक ही व्यक्ति है, कौन कहता है? जिसने अलग अलग ये तस्वीरें देखी वो नहीं कहेगा। जो मैं हूं जो कहता हूं कि ये एक ही व्यक्ति है, मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें एक ही व्यक्ति मुझे चारों तस्वीरों में दिखाई देता है। यस और नो? वो जगह जहां से ये बात मैं कहता हूं कि मैं अपरिवर्तनशील हूं, वो समझ में आ जाना, वो मैं विवेक कहता हूं। इतनी सी बात समझ में आ जाना कि इन चारों में एक ही आत्मा है, एक ही के अलग अलग स्वरूप है, ये समझ में आ जाना, ये विवेक है। ये अपरिवर्तनशीलता को समझ में आ जाना, ये अनचेंजिंग सेल्फ को इतना समझ में आ जाए तो वैसे ही मिजरी खत्म हो जाएगी। हम इतने जो दुखी होते रहते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब चल रहा है, उसके बीच में कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा, ये समझ में आ जाना, यही एक विवेक है। अगला है वैराग्य, डिस्पैशन, कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कोई ईश्वर का कोई पर्पस है, कुछ उसकी कहानी है जो हमें समझ में नहीं भी आई तो भी जो जैसा है वो ठीक है। जो कहते हैं ना, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुम कर रहे हो, ईश्वर जो कर रहे हो मुझे मंजूर है, जिस रूप में कर रहे हो मुझे मंजूर है, ये समझ में आ जाना, ये डिस्पैशन है। अगर हम सब चाहते हैं कहीं अच्छी जगह पे जाएं, मान लो हम स्विट्जरलैंड चले जाएं, हम एल्प्स को देख रहे हैं, सामने एल्प्स हैं हम देख रहे हैं, अब उसको आंखें खोल के कितनी देर देखते रहेंगे, आधा घंटा एक घंटा, थक जाएंगे, बोर हो जाएगा। वो कौन बोर हो जाता है? या मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, मैं आपको एक आइसक्रीम दूं आप खा लोगे, दूसरी दूं खा लोगे, तीसरी दूं खा लोगे, चौथी लेके आऊंगा तो आप कहोगे नहीं ले जाओ, मैं पांचवी लेके आऊंगा आप डंडा लेके भागोगे। तो क्या चीज है जो कहती है कि आइसक्रीम तो अच्छी है पर ये वो सुख नहीं ढूंढ है जो मैं ढूंढ रहा हूं? कुछ है अपने अंदर जो कहता है कि ये वो सुख नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं, वो समझ में आ जाना, वो वैराग्य है। तो ये इससे हम अपने जीवन में, इस मार्ग में हम स्थिर हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज जो है वो ये छह तरह की संपत्ति को समझ लेना। हम सब लगे हुए हैं जो है नोट इकट्ठे करने में। अगर समझ में आ जाए कि नोट के अलावा भी संपत्ति है, जैसे शम है, शम का मतलब ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, फोकस्ड हो जाना, जीवन में फोकस हो जाना, ये शम है। मैं यहां कुआं खोदूं, वहां कुआं खोदूं, वहां कुआं खोदूं, पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर खोदूंगा तो मिल जाएगा, ये फोकस हो जाना जीवन में, ये शम है। तो ये भी एक संपत्ति है, शम होना भी एक संपत्ति है, दम होना, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल होना, ये भी एक संपत्ति है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर अगर हम इन संपत्तियों को गिनते ही नहीं तो सिर्फ हम नोट इकट्ठे करते रह जाते हैं। पर अगर हमारा कंट्रोल ओवर सेंसेस नहीं होगा तो हम खाते रहेंगे, पेट भर गया तो भी खाते रहेंगे, तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो भोजन अच्छा है कि बुरा है? भोजन अच्छा है कि बुरा है? अगर दम नहीं है तो भोजन बुरा है, जहर है, और अगर दम है तो भोजन अच्छा है। तो ये दम होना भी एक संपत्ति है। तीसरी संपत्ति है तितिक्षा, एंड्योरेंस, फोरबियरेंस, कि जहां जीवन में सुख है वहां दुख भी आएगा, प्रॉफिट है वहां लॉस भी आएगा। ये समझ में आ जाना कि आज ये मेरे साथ बुरा है, हो सकता है यही चीज अच्छी हो जाए, कैरिड अवे नहीं हो जाना, जीवन को एक खेल कितना देखना, ये तितिक्षा है। चौथी संपत्ति उपरती है, कि अगर मेरे पास सब कुछ हो और मैं खा ना सकूं, डायबिटीज है, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, उसका कोई फायदा है? संतान है पर मैं संतान पे भरोसा नहीं कर सकता, उसका कोई फायदा है? नहीं। तो उपरती, उपरती का मतलब संपत्ति, उपरती भी एक संपत्ति है कि जो चीजें मेरे पास हैं उनका मैं उपभोग कर सकूं, ये उपरती हुई, तो ये भी एक संपत्ति है। पांचवी संपत्ति है श्रद्धा, फेथ होना। अक्सर मैं डीडीए में देखता हूं लोगों को अपने ही भाई पे फेथ नहीं है, अपनी पत्नी पे फेथ नहीं है, अपने घर में फेथ नहीं है। सबसे ज्यादा हनन जो है वो फेथ का हुआ है, विश्वास का हुआ है, रिश्तों का हनन हुआ है। फेथ बहुत बड़ी एक संपत्ति है, तो श्रद्धा जो है ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है। छठी संपत्ति है समाधान, कंटेंटेड हो जाना, संतोष में आ जाना। तो जब ये छह संपत्तियां मेरे पास होंगी, जब मैं जो है उसमें संतुष्ट रहूंगा तो तब मैं नोट के पीछे नहीं भागता रहूंगा। और जैसे ही मैं वहां पहुंच गया, जब मेरे पास ये छह संपत्तियां आ गई, तो अपने आप जीवन जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा और तब मैं जीवन में कुछ आगे ढूंढ सकूंगा। कहते हैं पैसे से आप मकान खरीद सकते हो बट नॉट ए होम, यू कैन बाई ए क्लॉक बट नॉट टाइम, यू कैन बाई ए बेड बट नॉट स्लीप, यू कैन बाई ए बुक बट नॉट नॉलेज, यू कैन गो टू ए डॉक्टर बट नॉट गेट हेल्थ, यू कैन बाई ए पोजिशन बट नॉट रिस्पेक्ट, यू कैन बाई ब्लड बट नॉट लाइफ, यू कैन बाई सेक्स बट नॉट लव। तो ये चीज समझ में आ जाना, ये हमने डीडीए में एक पोस्टर लगाया था, सिक्स काइंड ऑफ वेल्थ, इफ वी गेट ऑल दीज वेल्थ एंड डोंट, ये मनी हो और ये वेल्थ ना हो तो क्या करेंगे उसका। तो ये चौथा जो और आखिरी टूल जो है अपने सेल्फ तक पहुंचने का, वो ये है कि हमारा विजन कहीं हायर हो। देखिए अगर मैं ये छोटी सी चीज है, इसको मैं लेकर के नजदीक से देखता रहूं, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं एक छोटी सी चीज पर ही केंद्रित कर दूं, जैसे मुझे सिर्फ अपनी औलाद ही दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे, तो क्या होगा? आई विल लूज विजन ऑफ द वर्ल्ड। यही हो रहा है लोगों के जीवन में, अपने ही अपने में ही इतना उलझ गए हैं, उसी को देखते 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 जो लाइफ का व्यू है वो खत्म हो रहा है। द मोमेंट मेरा विजन कुछ हायर होगा तो ये जीवन अपने आप खेल लगने लगेगा। तो हम सबको ये जिम्मेवारी रहे कि हमारे सपने बड़े हों, सोच बड़ी हो, कुछ ना कुछ जीवन में हायर विजन हो। जब हायर विजन होगा तो ये सब संसार का खेल आसानी से खेला जा सकता है। तो वो मुमुक्षुत्व समझ में आता है। ये चार चीजें जो हैं हमें समझ में आनी है। सो आई थिंक अगर हम ये छोटी सी चीजों का ध्यान रखें, तो एक आखिरी में मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगा। मुझे दफ्तर में मैं कहता हूं, जो खुद काम करे वो अफसर, जिसको काम कहके कराए वो नौकर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा फंडा ये है कि जिसको हम काम कहके कराते हैं वो नौकर है, वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो। जो काम खुद करे वही अफसर है। जो थोड़ा भी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वो काम खुद करने लग पड़ते हैं, उनकी लाइफ में मूवमेंट होती है। और जब हर कोई अपने आप को अफसर समझने लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो टॉप मैनेजमेंट फ्री हो जाएगी देश के बारे में सोचने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने के लिए, समाज में बारे में सोचने के लिए। आज हो क्या गया है कि टॉप मैनेजमेंट इतनी उलझी हुई है, कोर्ट में जाकर के जवाब देना है, यहां जाना है, वहां जाना है। जो मेन पर्पस है एक विजन देने का, एक देश को दृष्टि देने का, वो नहीं कर पा रही है टॉप मैनेजमेंट। छोटी छोटी चीजों में उलझ गई है। तो हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपनी अपनी जिम्मेवारी सब लोग उठा लें, तो टॉप मैनेजमेंट जो देश की है, जो गवर्नमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो फ्री हो जाए कि वो कुछ बड़ा सोच सके, कुछ देश के लिए सोच सके, तभी हमारा देश आगे चल पाएगा। वरना हमारी टॉप मैनेजमेंट जिस तरह से उलझी हुई है तो कोई देश की आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगी। तो ये छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। थोड़ा सा करप्शन के ऊपर है और भी क्लोज इट। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। ये छोटा सा मैंने एक एक्शन एजेंडा बनाया है करप्शन के ऊपर, कि कैसे इस देश की जो स्थिति है उससे हम कैसे निकल के आ सकते हैं। शुड आई शेयर फॉर 2-3 मिनट्स? हाँ, ओके। करप्शन समाप्त करने के लिए जो मुझे समझ में आया कि हम आज लोगों के दिमाग में घुस गया है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो एक तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर को अलग करना पड़ेगा, जैसा कि आसियान कंट्रीज में है। वही व्यक्ति लेजिस्लेटर का काम करे, वही एग्जीक्यूटिव का काम करे, तो गड़बड़ होगी ही होगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया, 10% अच्छे लोगों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ह्यूमन वैल्यूज पे काम करना पड़ेगा। 0 से 8 साल के बच्चे के अंदर सारे वैल्यूज बैठ जाते हैं, संस्कार बैठ जाते हैं। अगर काम करना है तो 8 साल से छोटे बच्चों पे काम कीजिए, उनमें संस्कार डालिए। आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनको सिर्फ खाना दिया जा रहा है, उनके शरीर को खाना दिया जा रहा है, उनके मन को, उनकी बुद्धि को वहां जाके खाना देना पड़ेगा, तब हम देश को बचा पाएंगे, उठा पाएंगे। क्योंकि अगर एक बच्चे को सिखा देते हैं कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना, तो 10,000 किलो कूड़ा सड़क पे आने से बच जाता है। पर हमने क्या हल निकाला है कि हम कूड़ा खरीदने के ट्रक खरीदेंगे, कूड़ा उठाने के ट्रक खरीदेंगे, वो बाहर से आते हैं, मशीन लगी है कूड़ा खरीदने का ट्रक, क्योंकि सबको कमीशन मिलता है उसमें। तरीका क्या है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, घरों में, वहां संस्कार लेके जाए, वहां से काम करेंगे तभी सिस्टम में चेंज आएगा। बच्चों की शिक्षा में चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज वैल्यूइंग द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति कीमती है। अभी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं हमारे मुल्क में। हमें व्यक्ति को कीमत देनी पड़ेगी, और व्यक्ति को कीमत जब होगी जब वो व्यक्ति अपने आप को कीमत देगा। अपने आप को कीमत कब देगा? जब वो कुछ ध्यान साधना कुछ करेगा। अगर व्यक्ति ही अपने आप को कीमत नहीं देगा तो बाकी प्रशासन भी उसको एक एक कागज के टुकड़े की तरह ट्रीट करता है, एक रद्दी के की तरह ट्रीट करता है, और उसीलिए देश की स्थिति है। दूसरा, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स को जो ओवर प्रोटेक्शन मिली हुई है उसको चैलेंज करना चाहिए। हर पब्लिक के खर्चे का ऑडिट हम सबको मिलकर करना होगा। जो ओम्बड्समैन है, जो रिड्रेसल अथॉरिटीज हैं, उनको भी मोरली अकाउंटेबल होना होगा, और लोगों की बार बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, जो क्लास फोर इंप्लॉयज हैं, क्लास थ्री इंप्लॉयज हैं, जो कटिंग एज पे लोग बैठे हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग में या कहीं ट्रेनिंग में लाया ही नहीं जाता। इनफैक्ट ज्यादातर ट्रेनिंग में उनको भेजा जाता है जिनकी दफ्तर में जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जरूरत कटिंग एज पे है। कटिंग एज पे जो लोग बैठे हैं उनको ये महसूस हो जाए कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। सर्वेंट क्या होता है वो अभी तक समझ में नहीं आया। वो अंग्रेजों की तरह ही हम बिहेव कर रहे हैं, और इसीलिए देश की स्थिति है। ट्रांसपेरेंट पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। क्रिमिनल्स को आउट रखना चाहिए, इंडिविजुअल्स को भी ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अपने उनमें आत्मविश्वास हो जाए, और ज्यादातर काम ऑनलाइन करने चाहिए। तो ये छोटे से कुछ मेरे सुझाव थे, और मैं अगर कोई आपका सवाल हो तो आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू।
बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी भाई साहब, आपके ऊर्जावान विचार हम सबने सुने। आपको सुनकर लग रहा था कि एक चिंगारी काफी है आग सुलगाने के लिए, और हमारे गुलाटी भाई साहब काफी है समाज में परिवर्तन लाने के लिए। समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपने अपने जीवन के अनुभव से इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। पुनः आपको धन्यवाद। और आज के हमारे इस सेशन के, इस सत्र की चेयरपर्सन हमारी राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका परिचय आप सबको देना चाहूंगी। आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं, और राजयोग शिविर माउंट आबू में आप संचालिका हैं, टीवी चैनल में प्रवक्ता, महासम्मेलन में विशेष वक्ता, तथा आप बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू में शिक्षा प्रभाग की आप संयोजिका हैं। आपने विशेष 5 महाद्वीपों की यात्राएं की हैं। इसके अलावा देश विदेश में 70 देशों की आपने विशेष यात्रा की, और वहां पर आध्यात्म के द्वारा, राजयोग के द्वारा अनेक मानव आत्माओं को उस प्यारे प्रभु से, परमात्मा से जोड़ा है। आप विशेष राजयोग की अनुभूति कराते हैं। आपके बहुत सारे ऑडियो वीडियो कैसेट भी बने हुए हैं, आप सभी काउंटर से ले सकते हैं। तो अभी हम सब सुनेंगे हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी से आज के विषय के ऊपर, राजयोग के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। आदरणीय शीलू दीदी जी।
ओम शांति। शांति के सागर परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन भ्राता भरत त्रिवेदी जी, भ्राता सुनील गुलाटी जी, ब्रह्मा कुमारी रीना बहन जी, और आप सभी प्रशासन वर्ग से संबंधित भाई बहने, मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है कि कैसे आप सब ने अपने कीमती समय से कुछ समय निकालकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना समय दिया है। क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सब बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए यह विषय आपके लिए बड़ा ही एप्रोप्रिएट है, मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल। तो बिजी रहते हुए भी हम मेडिटेशन कैसे करें? हमारे पूर्व वक्ता भ्राता भरत त्रिवेदी जी ने बहुत सुंदर अपने अनुभव व्यक्त किए, कैसे उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। और भ्राता सुनील गुलाटी जी ने बहुत सी बातें हमें बताई कि अगर ये जीवन में आ जाए तो समाज का परिवर्तन हो जाए। पर हम आरंभ तो स्वयं से ही करेंगे। हम चाहते हैं विश्व में शांति हो, लेकिन विश्व में शांति से पहले व्यक्तिगत शांति की आवश्यकता है। कई समझते हैं विश्व में शांति होगी तब हमें शांति होगी, लेकिन नहीं, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो व्यक्तिगत शांति से विश्व में शांति होगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी बहुत ही ऊंचा उद्देश्य है। और वो स्व परिवर्तन कैसे आएगा? मेडिटेशन से। वैसे तो कई समझते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, कहां मैं समय दे सकूंगा मेडिटेशन के लिए, सुबह से लेकर के रात्रि तक कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस मेडिटेशन के लिए आपको अलग से समय देने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे भाई जी ने कितनी सुंदर बातें कही, श्वास हम लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, या जो कुछ भी हम करते हैं, इस पार्ट ऑफ नेचुरल लाइफ, हम उसके लिए कोई अलग से समय निकालते नहीं है। वो जीवन के अंतर्गत ये सब बातें आती है, इस पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। तो मेडिटेशन के लिए भी हमको खास अलग समय निकालने की आवश्यकता नहीं, कैन बी पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। जिस प्रकार वो सब बातें आवश्यक है, तो मेडिटेशन को भी अगर हम एक आवश्यक पहलू समझें तो हम कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि हमें इसके लिए समय नहीं है। तो कैसे ये हम सहज कर सकें? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम बहुत सुंदर बातें बताते हैं कि आप इसको नेचुरल रूप में स्वीकार कीजिए। हम विचार तो करते ही हैं, संकल्प तो करते ही हैं, लेकिन हमने देखा है जैसे इन्होंने परसेंटेज की कई बातें सुनाई, हम देखते हैं कि मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन अगर उन विचारों को हम कैटेगराइज करें तो कुछ पॉजिटिव विचार भी आते हैं, नेगेटिव विचार भी आते हैं, व्यर्थ विचार भी आते हैं और आवश्यक विचार भी आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे ही हमारे जो थॉट्स हैं वो आवश्यक ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे सारे ही थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। और जब वो नेगेटिव थॉट्स करते हैं तो हमारी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो जाती है, पर जैसे पॉजिटिव थॉट्स करते हैं तो एनर्जी हमको अनुभव फिर से होने लगती है। कई ऐसे हमारे विचार हैं जो बिल्कुल ही वेस्ट जाते हैं, जिनका न सिर है न पैर, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, पर वो भी हम कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं शेख चिल्ली की बातें। शेख चिल्ली की बहुत कहानियां हम सुनते हैं कि शेख चिल्ली को एक शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति था, उसको एक घी का घड़ा मिल गया और उस घी के घड़े को उठाकर वो जा रहा था। सोचा, मैं ये घी का घड़ा क्या करूंगा, कैसे मैं इसका सदुपयोग करूंगा, मैं कैसे इससे कुछ धन पाऊंगा। तो उसने सोचा, मैं ये बेचूंगा, उससे मुझे बहुत धन मिलेगा, फिर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मुझे बच्चे होंगे। अब तब तक उसका अभिमान भी चढ़ गया और पता नहीं क्या क्या मन में गुबार आ गया, बहुत कुछ सोच लिया। और फिर मेरा बच्चा कहेगा, पापा मुझे एक रुपया दो, मैं कहूंगा नहीं देता हूं, तो जो घी का घड़ा था ना सिर पर, का नहीं देता हूं, तो भूल गया कि घी का घड़ा सिर पर है और ऐसे हाथ से कर लिया, तो आप समझ सकते हैं घी का घड़ा वहीं समाप्त हो गया। तो हम भी बहुत सारी शेख चिल्ली की बातें करते हैं, परंतु उसमें हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति कितनी व्यर्थ चली जाती है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम उस व्यर्थ को समाप्त करते हैं। जैसे घड़े में जल है, लेकिन एक जरा सी सुराख आ गया, जरा सा सुराख आ गया, सारा ही वो पानी बह जाएगा। या अगर उस जल में थोड़ा सा जहर मिक्स हो गया तो पूरा ही जल वो जहर बन जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स ये वो जहर की तरह है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये जो थॉट्स हम मन में लाते हैं ये नेगेटिव थॉट्स में आते हैं और हमारा मन बहुत ही पोल्यूटेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता। या व्यर्थ सोचते हैं तो जैसे एक सुराख हो गया तो सारी शक्ति नष्ट हो गई। तो मेडिटेशन से हम अपने संकल्पों की बचत करते हैं, हम अपने संकल्पों को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमें आत्मा का ज्ञान मिला और हमें ये पता चला कि मैं वास्तव में अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो अति शुद्ध हूँ। इसलिए आप देखेंगे जब भी हम कोई अशुद्ध विचार मन में लाते हैं तो कहते हैं मन खाता है। जैसे ये सफेद वस्त्र हमने धारण किए हैं, जरा सा अगर दाग होगा तो कितना बुरा लगेगा। कोई कहेगा क्यों बुरा लगना चाहिए, बाकी तो सफेद है ना, जरा सा दाग अगर लग भी गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, इतना सारा सफेद और जरा सा दाग है तो बुरा तो लगेगा। तो आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में शुद्ध है, उस शुद्ध आत्मा के अंतर जैसे ही देह अभिमान आया, विकृतियां आई, वो अशुद्धता आई और मन खाता है। इसलिए मेडिटेशन के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आपको आज सुबह बताया कि बुद्धि वो फिल्टर का काम करती है जिससे हम रिजेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव को और पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा हमारा समय इतना बच जाता है जिसके आधार से हम उस शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। तो कैसे हम मेडिटेशन करते हैं, आप काम भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर स्वरूप आपको सुबह भी बताया था, हाथों से काम करो पर मन परमात्मा में हो, अपने आप को निमित्त समझो। तो ये भी मेडिटेशन है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, शक्ति उस परमात्मा की है, ये भी एक मेडिटेशन है। फिर कोई ऐसी बात, मान लीजिए आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, उसी समय अपने आप को कंट्रोल करो। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य समाप्त होता है तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, गाड़ी चलाते हैं और अगर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल बीच में आ गया तो ब्रेक लगानी भी बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और अगर एक्सीडेंट हो गया तो कितना समय, संपत्ति, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, शक्ति नष्ट हो जाती है, जीवन ही खत्म हो जाता है, थोड़ी सी ब्रेक नहीं लगाई, ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो मेडिटेशन के द्वारा हम सदा वो अटेंटिव रहते हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके आधार से ये सारी शक्तियां जीवन की हमारी बच जाती है। मेडिटेशन एक कवच का काम करता है, जिस प्रकार पहले जमाने में कवच पहनते थे सोल्जर्स, हाथ में, एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में ढाल होती थी और एक कवच पहनते थे। अगर दुश्मन का वार हो भी गया तो भी ढाल के जरिए उस दुश्मन के वार को रोक सकते थे और फिर अगर अटैक बहुत ज्यादा नजदीक हुआ तो कवच पहना हुआ था वो एक डिफेंसिव वेपन बन जाता था। तो मेडिटेशन एक डिफेंसिव वेपन के रूप में है, जिसके द्वारा हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जो आत्मा के लिए उचित है वही करना है, जो आत्मा के लिए उचित नहीं है वो नहीं करना है। सब कॉन्शियसनेस की बहुत सुंदर बात हमारे पूर्व वक्ता ने कही और आज शाम को किसी ने मेरे से प्रश्न भी किया कि आपने संस्कार की बात कही, फिर सब कॉन्शियस माइंड की बात कही, तो थोड़ा इसको स्पष्ट करें। तो वास्तव में वो सब कॉन्शियस माइंड ही हमारा संस्कार है और ये संस्कार भी कई प्रकार के हैं जो आत्मा के अंदर ही निहित होते हैं। एक संस्कार वो है जो हमारे माता पिता से हम लेते हैं, वो भी हम बचपन में जो बातें सीखते हैं हम कभी भूल नहीं सकते। कई हमें भाई बहने सुनाते हैं, बस बचपन में जो मैं माता पिता ने बातें बताई थी वो आज भी हमें कितनी काम आती है, पर बचपन में वो शिक्षा नहीं मिली माता पिता से तो आज हम उसका अभाव महसूस करते हैं। तो वो माता पिता के संस्कार भी मिलते हैं, दूसरे वातावरण के भी संस्कार मिलते हैं, संघ के संस्कार मिलते हैं। तो जो जिस संघ में हम घूमते उसका रंग चढ़ता है, जन्म से कोई सिगरेट नहीं पीता है, जन्म से कोई शराब नहीं पीता है, लेकिन ये संघ का रंग लगने से ये संस्कार बन जाता है। हम कई बार कहते हैं पहले तो व्यक्ति सिगरेट पीता है, पहले वो पीता है शराब, लेकिन फिर उसके बाद सिगरेट और शराब उसको पीने लगती है, वो नहीं पीता पर वो सिगरेट शराब उसको पीने लगते, क्योंकि संघ का रंग लग गया और संस्कार वैसा ही बन गया। कुछ संस्कार पूर्व जन्म से हमें मिलते हैं, पूर्व जन्म जिसमें माता पिता के वो संस्कार नहीं है, पर बच्चे में वो संस्कार कहाँ से आए, पूर्व जन्म से आत्मा अपने साथ लेकर के आई। लेकिन जो ओरिजिनल संस्कार है हमारे वो तो आत्मा अति शुद्ध है। अब उन संस्कारों को हमें फिर से जागृत करना है जो सोए हुए संस्कार है। इसलिए व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज टू ड्रॉ आउट व्हाट इज विद इन। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही है, व्हाट इज मेडिटेशन, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। यू हैव परफेक्शन विद इन यू विच यू हैव टू मैनिफेस्ट थ्रू मेडिटेशन। अर्थात वो आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, सद्गुणों का चिंतन, क्योंकि ये चिंतन जैसा होगा वैसी ही आपकी स्थिति बनेगी। अगर चिंतन ही अभिमान का है, अशुद्धता का है, तो स्थिति भी वैसे ही बनेगी, कर्म भी वैसे ही होंगे। तो मेडिटेशन के द्वारा वो श्रेष्ठ चिंतन हमें मिलता है। जैसे हम गलत काम करने जाते हैं, हम पहले अपनी आत्मा से पूछें क्या सही है क्या गलत है, अंतरात्मा की आवाज आप सुनिए। हम कई बार अपनी आत्मा की आवाज ही नहीं सुनते हैं। कई बार हम अखबारों में हम पढ़ते हैं बच्चे को माँ ने कहा बेटा ये मत करो, ये मत करो बेटा, ये अच्छा नहीं है, ये मत करो। लेकिन गुस्सा आया बच्चे को, ये माँ मुझे ऐसे क्यों कहती है, तो माँ कोई बंदूक लेके माँ कोई मार डाला है, माँ का आवाज ही बंद कर दिया, चुप हो जाओ, तो मार डाला गुस्से में आकर के, माँ ने मुझे रोका क्यों। तो हम अपनी बुद्धि को ही मार डालते, बुद्धि की आवाज को ही खत्म कर देते हैं, और जैसे बताया इंद्रियों के वश होकर के चलने लगते हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा फिर से हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगते हैं और उसके आधार से हम कर्म करते हैं। परमात्मा की आवाज भी हम सुनने लगते हैं, क्योंकि वो इंट्यूशंस, वो इंस्पिरेशंस हमको मिलते हैं। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में अगर कोई गलत डिसीजन दे देते हैं तो कितनों का नुकसान कर सकते हैं। उस समय आप डिसीजन मत दो, आप शांत मन से डिसीजन दो, और उस समय अगर मन अशांत है, कंफ्यूज है, नेवर माइंड, पोस्टपोन द डिसीजन। यू कैन वेट अंटिल द नेक्स्ट डे फॉर द डिसीजन व्हेन द माइंड इज वेरी मच काम, उस समय आपके सही डिसीजन होंगे। जैसे सुबह भी बताया कि मन एकाग्र चाहिए, डंडी सीधी चाहिए, अनबायस्ड चाहिए, दिमाग अनबायस्ड चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, वैल्यूज को हमें महत्व देना, ये मेडिटेशन से आता है। क्योंकि हमें यह अनुभव होता है कि मेरा जो असली स्वभाव है वो तो शांति है, शांति मुझे बाहर से नहीं पानी है, ये मेरा ही स्वभाव है। तो जैसे ही कुछ मन अशांत हो, कंफ्यूज हो, अपने अंदर चले जाओ। वैसे भी कहते हैं कि शांति चाहिए अंदर जाओ, शक्ति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ। तो अंदर कैसे जाएंगे, अंदर जाना माना मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज को पहचानना, इसको हम कहते हैं अंदर जाना। कोई शरीर के अंदर जाने की बात नहीं है, इसलिए बार बार आत्मा पर एम्फोसिस दिया जा रहा है। तो जो कभी भी कोई बात हो, मैं कौन, इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ का पहले ज्ञान मिला तो सेल्फ नॉलेज मिला, आत्मज्ञान मिला। आत्मज्ञान से आत्मचिंतन होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। और जैसे ही आत्मचिंतन किया, उस आत्मचिंतन से आत्मनिरीक्षण होता है कि अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो मेरे मन को मुझे शांत रखना है, अगर मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ तो मुझे मेरे मन में प्रेम के ही विचार लाने हैं, अगर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ तो मुझे सुख के ही विचार लाने हैं। तो जो मैं चिंतन करूंगी वही मैं स्वरूप बनूंगी, उसके लिए आत्म निरीक्षण करना जरूरी है, फिर आत्म विश्लेषण भी करना जरूरी है, ये मन अशांत हुआ क्यों। और जैसे आत्म विश्लेषण किया तब आत्म संयम कर सकेंगे। तो ये मेडिटेशन आत्म संयम का ही दूसरा रूप है, जिससे ही आत्म बोध होगा और उसी आत्म बोध से ही आत्म परिवर्तन होगा। तो जब भी आप कोई कार्य करते हो और अगर देखते हो कि बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत अशांत हो गया है, बहुत विचलित हो गया हूँ, एक सेकंड के लिए सब काम रोक सकते हैं, क्योंकि उस कंफ्यूज स्थिति में आपका समय, श्वास, संकल्प शक्ति बहुत व्यर्थ जाएगा और कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। और उसके बजाय उस समय आप अपने मन को शांत करके अंदर चले जाइए। कई बार हम देखते हैं दफ्तरों में जाते हैं, भाई फलाना कहाँ गया, जरा चाय पीकर आता है, जरा सिगरेट पीकर के आता है, क्योंकि दफ्तर में तो नहीं कर सकते, तो समझते कि अगर चाय पी के आऊंगा, सिगरेट पी के आऊंगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर ये करूंगा, उसके लिए अलग थोड़ा समय देते हैं। हम कहते हैं ये चाय पीना, सिगरेट पीना, ये भी आदत न डाले, वहीं बैठे बैठे अपने दफ्तर में, अपने टेबल पर वहीं बैठे बैठे आत्मचिंतन करना शुरू कर दीजिए, आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दीजिए। और जैसे बहन जी ने बताया, केवल वो सहारा ही नहीं है, परमात्मा मेरा साथी है, वो चिंतन करना शुरू कर दीजिए। और वो साथी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। और अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपका टेंशन है, जो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है, उनको सौंप दो। हम कई बार अनुभव करते हैं, जैसे ही मैंने परमात्मा को वो सौंप दिया, उसी समय परमात्मा की इतनी हमें मदद मिलती है। वैसे तो गाते हैं, अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में। तो कभी अपना बोझ ईश्वर को दे दो, ये भी मेडिटेशन है, हम परमात्मा को भूले नहीं। तो मेडिटेशन के कई स्वरूप हैं। हमारे चिंतन में एक परिवर्तन लाना होगा, तब ये मेडिटेशन होगा। अंतर जाएं, फिर ऊपर जाएं, मन बुद्धि को ऊपर ले जाओ, एक उड़ान भर दो उस परम धाम के तरफ, और वहां महसूस करो मैं परमात्मा के सम्मुख हूँ। कल आपको सुबह और अच्छा परिचय परमात्मा का जब मिलेगा, तो उसमें और आप अच्छी अनुभूति कर सकेंगे। तो इट इज एन इनवर्ड जर्नी, इट्स एन अपवर्ड जर्नी एंड एन आउटवर्ड जर्नी। उस परमात्मा से फिर मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ। तो इसके लिए आपको अलग समय देने की भी जरूरत नहीं है। काम करते हुए, कार्य करते हुए, कुछ लिखते हुए, टाइप करते हुए, कंप्यूटर पर बैठे हैं, बहुत कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन है, वो सब लेते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, आप सब कुछ करते हुए भी इन्वर्ट जा सकते हो और वेस्ट से आपकी बहुत बचत होगी। तो मैं समझती हूँ हम और अधिक न कुछ कह करके थोड़ा सा और मेडिटेशन करेंगे, जिस मेडिटेशन के माध्यम से एक आपका ऐसा अभ्यास बन जाए कि जब भी कोई ऐसी बात हो जस्ट गो इनवर्ड्स। हम बताते कछुए में भी वो अकल है, वो अंदर ले लेता है अपने अंग, तो कम से कम इतना तो हम अभ्यास कर सके कि जब ऐसी स्थिति हो हम अंतर में चले जाएं, अपने आप को वो आत्मा निश्चय करें, मैं एक ज्योति हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरे असली संस्कार अति शुद्ध है, मैं वो पवित्र आत्मा हूं, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, इस संसार में मेहमान हूं, एक मुसाफिर हूं, एक एक्टर हूं, मेरा कुछ नहीं है इस संसार का, ये कोई वस्तु मेरी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, था हूं और सदा रहूंगा, मैं उस परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा के सर्व गुणों का मैं अधिकारी हूं, शांति मेरा अधिकार है ईश्वर से, प्रेम मेरा अधिकार है ईश्वर से, शक्ति मेरा अधिकार है ईश्वर से, वो अधिकार मैं स्वयं में अनुभव करूं, उसके लिए मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, अधिकारी हूं। ये नहीं कहूं हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं, हे प्रभु आप शांति के सागर हो तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, एक सेकंड में शांति का अनुभव होगा, एक सेकंड में आपको चैन मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी, मन आपका बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और उसके बाद फिर आप कर्म कीजिए, तो आप अनुभव करेंगे कि जो काम आपको आधा घंटा लगना होगा वो आप मेडिटेशन एक मिनट का किया वो कार्य आपका 10 मिनट में हो जाएगा। इंस्पिरेशंस मिलेगी आपको परमात्मा से, इंट्यूशंस मिलेगी, हम तो उन्हीं इंट्यूशंस पर चलते हैं और उसके लिए मन को बहुत साफ रखते हैं, मन को बहुत समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, और देखिए कितना सुंदर आप अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए हम कुछ मिनटों के लिए उसका अभ्यास करें और फिर आप ये अभ्यास हर घंटे घंटे कीजिए, घंटे हर घंटे एक मिनट निकालिए, जैसे हम कितना समय व्यर्थ गंवाते तो उसके लिए उसकी बचत करके एक मिनट हर घंटे में निकालिए। तो हमारे यहाँ यह ट्रैफिक कंट्रोल होता है, आपने सुना होगा गीत बजता है तो 10:30 बजे 12 बजे 5:30 बजे 7:30 बजे और हर घंटे घंटे एक मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उस समय हम एक मिनट के लिए सब काम रोक दो और अंदर चले जाओ। अभी प्रैक्टिस करते हैं, बैठेंगे सीधा और ये प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मेडिटेशन आप लगातार अगर करते रहें सुबह से रात्रि तक, कई बार एक एक मिनट ही देंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका श्वास, आपका संकल्प, आपकी शक्ति बहुत ही बच गई और उसको आप सफल कर सकेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो चलिए हम 10 मिनट इतना सुंदर अनुभव करें, सब बातों से न्यारे हो जाएं, बिल्कुल निरसंकल्प हो जाएं, अपने भीतर में अपनी आत्मा तक पहुंचिए जो अति शुद्ध है, अति पवित्र है, प्रकृति से न्यारी है, अपना ध्यान दो नेत्रों के बीच भ्रुकुटी पर करें, यही मुझ आत्मा का इस शरीर में स्थान है, मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, यह शरीर मुझ आत्मा से अलग है, जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र के समान है जो मुझ आत्मा ने धारण किया है। ये शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी आत्मा हूं। अति सूक्ष्म हूं, अति हल्की हूं, निर्संकल्प हूं, सर्व बंधनों से मुक्त हूं, न्यारी हूं, परमात्मा की प्यारी हूं, मेरा मूल वतन पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों के प्रकाश से भी बहुत दूर, वह शांति का धाम है। मन बुद्धि एक सेकेंड में उड़ान भर वहां पहुंच जाए, इस देह और देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह के आकर्षणों से, देह के बंधनों से न्यारी हो जाए। एक बेहद प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाए जहां असीम शांति ही शांति है। कितनी निरसंकल्पता है, यहां परमात्मा का बेहद प्यार अनुभव करें। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। परमात्मा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, उनकी शक्ति मुझे मिल रही है, अंतर में उस ईश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है जिनसे इतनी शक्ति मिली, और हम धन्य हो गए। परमात्मा का सानिध्य पाले, उनकी आशीर्वाद मिल रही है, जिससे मेरे सर्व बंधन समाप्त हो गए, मैं आत्मा मुक्त हो गई। जो पाना था वो सब पा लिया। उस सर्वशक्तिमान की शक्ति मिलते ही आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने लगी। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। अब मेरा मन शांत है। और इसी शांत मन में परमात्म प्यार अनुभव हो। और उस शक्ति को स्वयं में समाकर फिर वापस आए कर्म क्षेत्र पर। तब हमारे कर्म भी कुशल होंगे और समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल होगा और यह जीवन सार्थक बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद दीदी जी, आपने ना सिर्फ राजयोग मेडिटेशन के बारे में हम सबको अवगत कराया बल्कि राजयोग अनुभूति कराकर हम सभी का कनेक्शन उस प्यारे परमात्मा से जोड़ा। वास्तव में दीदी जी पिछले 55 वर्षों से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़कर अनेक आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से, प्यारे शिव बाबा से जोड़ रहे हैं और आज उसी कड़ी में आपने हम सबको भी राजयोग अनुभूति कराई। आज के सत्र में हम सबने भली भांति जाना पहचाना कि राजयोग परमात्मा का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, हम सबके लिए एक अचूक औषधि है जिससे हम अपने तन और मन को, अपनी बुद्धि को सुख शांतिमय बना सकते हैं और अपना जीवन सरल तरीके से इजी होकर जी सकते हैं। आप सबको आज के सत्र में हमारे महानुभावों से, अनुभवी वक्ताओं से ऐसे सुंदर विचार, प्रेरणादायी विचार सुनने को मिले और जहाँ तक हम समझते हैं कि राजयोग के बारे में आप सबको बहुत सारी जानकारियाँ मिली और आप सबका मन भी ऐसे सुंदर राजयोग को करने के लिए उत्साहित हुआ होगा, क्योंकि हमारे गुलाटी भाई साहब ने जैसे ही बताया कि उमंग उत्साह के पंख, तो राजयोग के द्वारा आज वो उमंग उत्साह के पंख हम सबको लग गए हैं और उन पंखों के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में मैं सभी महानुभावों को, मंचासीन सभी अतिथियों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबसे भी कहेंगे कि तालियों के द्वारा मन के भावों को धन्यवाद के रूप में हम व्यक्त करें। कि आपने इतना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। पुनः आपको धन्यवाद और इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने इतने इतने समय तक और इतने प्यार से आप सबने सुना, आप सभी को तहे दिल से बहुत ज्यादा थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि सुनने की शक्ति मैं समझती हूँ बहुत बड़ी शक्ति है, जो आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उस शक्ति का प्रयोग आपने यहाँ दिखाया है। आप बहुत देर से बहुत प्यार से सुन रहे थे, तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय शीलू दीदी जी से निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथियों को आप शॉल पहनाकर सम्मानित करें। बहनों से निवेदन है, आदरणीय भ्राता गुलाटी साहब जी को शीलू दीदी जी के द्वारा परमात्मा के घर की ईश्वरीय सौगात अनुपम उपहार शॉल छत्र छाया के रूप में सप्रेम भेंट की जा रही है। अभी हम सभी एक मिनट के लिए उस प्यारे परमात्मा को धन्यवाद देकर आज के सुंदर सत्र को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।